आदरणीय भिक्षु संघ और धर्म प्रेमी सज्जनों सन्नारियों, धर्म में सबका मंगल समाया हुआ है, धर्म में सबका कल्याण समाया हुआ है। पर सही माने में धर्म को समझें और समझकर उसे धारण करें, उसे जीवन का अंग बना लें, धर्म जीवन में समा जाए, मंगल तभी होता है। केवल चर्चा करके रह जाएं, वाणी विलास करके रह जाएं, बुद्धि विलास करके रह जाएं, तो धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सही माने में अपना मंगल साधना है, अपना कल्याण साधना है, तो धर्म धारण करना होगा। जो महापुरुष सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने केवल धर्म का उपदेश ही नहीं दिया, कैसे जीवन में धारण करें इसका एक सहज सरल तरीका बता दिया। अगर कोई सहज सरल तरीका हमारे पास न हो धर्म धारण करने का, तो धर्म केवल धर्म सभाओं का विषय होके रह जाए, चर्चा का विषय होके रह जाए, बहुत हो तो कर्म कांडों का विषय होके रह जाए, उससे कुछ मिलता मिलाता नहीं। रोगी व्यक्ति केवल औषधि की चर्चा करके ही रह जाए, औषधि को नमस्कार करके ही रह जाए, वैद्य को नमस्कार करके रह जाए, तो उसका रोग कैसे मिटेगा? वैद्य ने जो औषधि बताई, इसके लिए वैद्य को धन्यवाद देना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना, आदर का भाव होना, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो औषधि दी गई उस औषधि के प्रति श्रद्धा होनी, विश्वास होना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा अच्छी बात यह है कि औषधि धारण करें, औषधि का सेवन करें। औषधि का सेवन करें ही नहीं और वैद्य की केवल प्रशंसा करते रह जाएं, वैद्य को केवल नमस्कार करते रह जाएं, औषधि की प्रशंसा करते रह जाएं, औषधि को नमस्कार करते रह जाएं, तो हमारा रोग कैसे दूर होगा? रोग दूर करने के लिए तो औषधि का सेवन करना होगा। कोई प्यासा आदमी केवल पानी की चर्चा ही करता रहे, सारे जीवन पानी की चर्चा करता रहे, पानी की प्रशंसा करता रहे, पानी को नमस्कार भी करता रहे, पानी पिलाने वाले को भी नमस्कार करता रहे, पर पानी पिए ही नहीं, तो उस प्यासे आदमी की प्यास कैसे बुझेगी? भूखा आदमी भोजन की चर्चा ही करता रहे, भोजन की प्रशंसा ही करता रहे, भोजन देने वाले को नमस्कार ही करता रहे, पर भोजन खाए नहीं, भूख कैसे मिटेगी? धर्म तो धारण करने के लिए होता है। चर्चा करनी अच्छी है, उससे प्रेरणा मिलती है, उससे मार्गदर्शन मिलता है, उस प्रेरणा का लाभ लेना चाहिए, मार्गदर्शन का लाभ लेना चाहिए, पर मुख्य बात तो यह है कि धारण करना चाहिए। आज उस महापुरुष का जन्म दिवस है, आज उस महापुरुष का बोधि दिवस है, आज उस महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है। उस महापुरुष को याद करें, उनके गुणों को याद करें, उनके उपदेशों को याद करें, उन महापुरुष के प्रति श्रद्धा का भाव जगाएं, उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धा का भाव जगाएं। आज का ये पावन दिवस इस प्रकार प्रेरणा पाने के लिए उस महापुरुष के प्रति भी, उनके उपदेशों के प्रति भी श्रद्धा जगाने का दिन है। लेकिन अगर केवल श्रद्धा जगाकर ही रह गए, केवल गुणगान गाकर ही रह गए और अभ्यास जरा सा भी नहीं किया, जीवन में धर्म धारण अपनी जान, हम उस महापुरुष का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज उनको याद करते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा से हमारा सिर झुकता है, हमारा हृदय भरता है। लेकिन सही सम्मान तो उस महापुरुष का तभी होता है जबकि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हैं। इससे ऊंचा और कोई सम्मान नहीं होता। इसीलिए बार बार समझाया गया, धम्मानु धम्म परिपत्य बुद्धं पूजे। बुद्ध की पूजा कैसे करेंगे? बुद्ध की किसी मूर्ति के सामने बैठकर सिर झुकाकर 3 बार नमस्कार करना, फूल चढ़ाना, धूप जलाना, दीप जलाना, उनके गुणगान करना, ये सारे उनके पूजा में सम्मिलित हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है। पर उससे ज्यादा अच्छी बात एक और है, वो समझनी चाहिए। उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है बुद्ध की पूजा की कि धर्म धारण करते हैं। धम्मानुधम्म पटिपत्या बुद्धं पूजे, प्रतिपादन करते हुए धर्म का, अनुधर्म का प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादन करें नहीं, उस महापुरुष ने जो सिखाया उसे जीवन में धारे नहीं, और कहीं ये कि हम उस महापुरुष के भक्त हैं तो हम कैसे भक्त हुए। कोई पुत्र अपने पिता का सम्मान कैसे करे, उसका कहना तो माने नहीं, जो उपदेश पिता देता है उसका पालन नहीं करे, जिस रास्ते वो चलने को कहता है उससे विपरीत रास्ते चले और कहे कि मैं पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, तो नहीं सम्मान करता, जरा भी सम्मान नहीं करता। तो भगवान बुद्ध का सम्मान करना है, उनके भक्त हैं उनका आदर करना है, उनकी पूजा करनी है, तो एकमात्र तरीका यही है कि उनके बताए हुए उपदेशों पर चलें, और उनके बताए हुए उपदेशों पर चलकर हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे, अपना ही मंगल साध रहे हैं। जो रास्ता बताया गया, जो मार्ग बताया गया, उस मार्ग पर एक कदम भी उठाएंगे तो उतना उतना ही अपना कल्याण होना शुरू हो जाएगा। जितने जितने कदम उठाएंगे उतना उतना कल्याण होना शुरू हो जाएगा, उतना उतना मंगल होना शुरू हो जाएगा। अपने मंगल के लिए धर्म धारण करना है, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए धर्म धारण करना है, अपने लोक और परलोक दोनों को सुधारने के लिए धर्म धारण करना है। धर्म में तो मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, बड़ा मंगल समाया हुआ है धर्म में। मंगल की एक बात कहते हुए कहा भगवान ने, पति रूप देश वासुचे पुबेचे कत पुण्यता अत सम्म पणिधिच एतंग मंगलमुत्तमं, एतंग मंगलमुत्तमं, ऐसा उत्तम मंगल है धर्म में। क्या उत्तम मंगल है हमारा? कहा पति रूप देश वासुचे, अच्छे देश में निवास करें तो मंगल ही मंगल है। तो सचमुच कितने मंगल की बात है, इस देश के लोगों के लिए इससे अच्छा और क्या मंगल कि ऐसी धरती पर वास कर रहे हैं जहां बुद्ध जन्मे, ऐसी धरती पर वास कर रहे हैं जहाँ के हिमालय पर न जाने कितने बोधिसत्व तपे, न जाने कितने संत तपे, न जाने कितने ऋषि तपे, न जाने कितने मुनि तपे, सारा वातावरण यहाँ का धर्म की तरंगों से अप्लावित है, तरंगित है। ऐसा सुंदर देश, ऐसा धर्मवान देश किसी को रहने को मिले तो बड़ा भाग्यवान होता है, तो मिलता है। मंगल की बात हुई कि धर्म देश में रहना हो गया, और एक मंगल की बात होती है कि पहले का कोई पुण्य होना चाहिए, पुण्य का संग्रह होना चाहिए। पुण्य का संग्रह तो है ही, इसमें कहीं संदेह करने को जगह नहीं। पुण्य का संग्रह नहीं होता तो यह मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता। मनुष्य जीवन मिल गया, यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया कि हमारे पास पुण्य कर्मों का संग्रह है। ये दोनों बातें हों, अच्छे अनुकूल देश में, धर्म देश में रहने को मिले, पुराना पुण्य संग्रह हो, तो केवल इन दो बातों से ही मंगल नहीं सकता, अब तीसरी उससे भी बड़ी बात करनी पड़ती है, अत्त सम्मा पणिधिचे, सम्यक रूप से आत्म प्रणिधान करना पड़ता है तो मंगल साधना शुरू होगा। अब क्या कर रहे हैं? पहले जो पुण्य कर्म किए उनका फल मिल गया, पिछले पुण्य कर्मों की वजह से मनुष्य का जीवन मिल गया, पिछले पुण्य कर्मों की वजह से ऐसा अच्छा धर्म देश मिल गया जहाँ धर्म का अभ्यास किया जा सकता है, जहाँ इस हिमालय की गोद में धर्म की साधना की जा सकती है। बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अब जो जीवन मिला है इसका यदि उपयोग नहीं कर पाए तो निरर्थक गया ना जीवन। मनुष्य का जीवन निरर्थक जाने के लिए नहीं है। जैसे पशु अपना जीवन पूरा करता है, खाता है, पीता है, सोता है, इस तरह के उस तरह के इंद्रिय भोगों को भोगता है, मनुष्य भी इसी प्रकार अपना जीवन बिता दे तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर हुआ। कुदरत ने मनुष्य को एक इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वो आत्म प्रणिधान हो सकता है, पशु नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकता, सरीसृप नहीं हो सकते, कीट पतंग नहीं हो सकते, प्रेत प्राणी नहीं हो सकते। ये मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अपने आप को देख सकता है, आत्ममुखी हो सकता है। अपनी ओर देखकर ही हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। जब तक बहिर्मुखी हैं, जब तक परांगमुखी हैं, तब तक अपने विकारों को नहीं निकाल सकते। और विकारों को नहीं निकाल सकते तो हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, सही माने में हमारा मंगल नहीं हो सकता। इधर उधर थोड़े थोड़े इंद्रिय सुखों को भोग करके अपने को धोखे में रख सकते हैं, औरों से तुलना करते हुए अपने को धोखे में रख सकते हैं। अमुक व्यक्ति के पास ऐसा सुख साधन नहीं है, देख मुझे प्राप्त हो गया। अमुक के पास ये बात नहीं है, देख मुझे प्राप्त हो गया। इस धोखे में जीवन बिता सकते हैं, पर मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हुआ। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी बात में कि जो अनोखी शक्ति मनुष्य को दी है प्रकृति ने, कुदरत ने, उसे ही कोई कहना चाहे देवी, देवता, ईश्वर, ब्रह्म, हमें कोई झगड़ा नहीं। जिस किसी ने भी हमें यह शक्ति दी है उसका उपयोग करें। अपने आप को देखने की शक्ति, आत्ममुखी होने की शक्ति, अपने आप को देखे बिना, अपने विकारों को देखे बिना कैसे मुक्त होंगे अपने विकारों से, ये बहुत बड़ी देन थी भगवान बुद्ध की। उनके पहले भी शील सदाचार तो थे ही, शील सदाचार की चर्चा तो थी ही, शील सदाचार का सम्मान तो था ही। उनके पहले भी चित्त को एकाग्र कर लेना, चित्त को एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान करने, समाधि करनी, उनके पहले भी थे ही। उन्होंने क्या नई बात दी? उन्होंने एक और बड़ी नई बात ये दे दी कि इन गहराइयों तक पहुंच जाना, अपने अंतर मन के उन गहराइयों तक पहुंच जाना कि जहां गांठे बांधने का काम शुरू होता है वहां जाकर के गांठे बांधनी रोकनी। गांठे बांधने की जो आदत पड़ गई है, प्रति क्षण अंतर मन की गहराइयों में गांठे बांधे जा रहे हैं, गांठे बांधे जा रहे हैं, उस पर कहां रोक लगाएं? केवल बुद्धि के स्तर पर रोक लगा के रह जाएंगे तो केवल चेतन चित्त हमारा सुधरेगा। जो अर्धचेतन है, जो अचेतन है, अंतर मन की वो गहराइयां जहां प्रतिक्षण गांठे ही गांठे बांधे जा रहे हैं, प्रतिक्षण मैल ही मैल चढ़ाए जा रहे हैं, उस आदत के बाहर कैसे निकलेंगे? भगवान बुद्ध के पहले भी लोग इस बात को समझते थे कि हमें राग रंजित नहीं होना चाहिए, हमें द्वेष दूषित नहीं होना चाहिए, बड़ा खतरनाक है, बहुत हानिकारक है, हमें बड़ा दुख देता है, व्याकुल बनाता है। जब जब राग जागता है मन में तब तब प्राणी दुखी हो जाता है, जब जब द्वेष जागता है प्राणी दुखी हो जाता है, राग से बचना चाहिए, द्वेष से बचना चाहिए। ये बात भी बुद्ध ने नई नहीं दी, पहले थी ही भारत में। पर होता क्या था? जो आज भी होता है, हम समझते हैं कि राग क्यों जागा, इन इंद्रियों से जो विषय टकराए उनको अच्छा माना तो राग जागा, उन्हें बुरा माना तो द्वेष जागा। आंख से कोई रूप दिख गया, आंख से रूप दिख गया और वो सुंदर लगा, अच्छा लगा, उसे चाहने लगे तो राग पैदा करने लगे। कोई रूप अच्छा नहीं लगा तो उसकी वजह से उससे द्वेष पैदा करने लगे। कान में कोई शब्द आया, वो शब्द मधुर लगा, प्रिय लगा, राग पैदा करने लगे। वो शब्द अप्रिय लगा, बुरा लगा, उससे द्वेष पैदा करने लगे। नाक में कोई गंध आई, बड़ी सुगंध आई, अच्छी लगी, राग पैदा करने लगे। दुर्गंध आई, उससे घृणा करने लगे, द्वेष पैदा करने लगे। जीभ पर कोई रस पड़ा, बड़ा मधुर, बड़ा रसीला, तो राग पैदा करने लगे। कोई कड़वा कसेला रस पड़ गया तो उससे द्वेष करने लगे। शरीर से स्पर्श किया, कोई ऐसी वस्तु को, कोई ऐसे व्यक्ति को प्रिय लगा, राग पैदा करने लगे। किसी ऐसी चीज को स्पर्श कर लिया, उसको प्रिय लगा, द्वेष करने लगे। इसी प्रकार ये पांच दरवाजे जो इंद्रियों के हैं शरीर पर, ऐसा ही एक दरवाजा मन का भी। मन में कोई चिंतन उठा, कोई विचार उठा, और वो विचार प्रिय लगा, उस विचार के प्रति राग पैदा करने लगे। वो विचार अप्रिय लगा, उसके प्रति द्वेष पैदा करने लगे। तो ये जो हमारी छह इंद्रियां हैं, छह दरवाजे हैं, छह खिड़कियां हैं, इन पर जो जो विषय टकराते हैं, और इन दरवाजों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी दरवाजे पर कोई न कोई विषय प्रतिक्षण टकराते ही रहता है, और हम उसे अच्छा मानकर राग पैदा करते हैं, उसे बुरा मानकर द्वेष पैदा करते हैं। ये सारी बातें भी बुद्ध के पहले लोग जानते थे, कोई नई बात नहीं थी। बुद्ध ने क्या करते थे? राग से बचने के लिए, द्वेष से बचने के लिए, विषयों से दूर भागो, दूर भागो। कहीं हमसे गलती भी हो गई, अगर आंख ने ऐसा कोई काम कर लिया कि जिससे बहुत राग जाग गया, बहुत काम वासना जाग गई, ऐसा कोई रूप देख लिया, तो अब उसका दमन करने के लिए उस पर क्रोध पैदा करते हुए आंख ही फोड़ लो। जीभ से कोई ऐसा रस चख लिया और उसकी वजह से आसक्तियां बहुत बढ़ गई, जीभ ही काट फेंको। यूं शरीर को कष्ट दो, बड़ा कष्ट दो। भोजन के प्रति बहुत आसक्ति है, खाना ही बंद कर दो। ऐसा उपवास करो, महीनों का उपवास करो, अपने आप ये राग निकल जाएगा। इस तरह की एक बात चल पड़ी। तो एक ओर तो ये होता था कि उसी राग और द्वेष के जो विषय हैं उनमें लोट पलोट लगाते रहो, ये एक अंत था सच्चाई का। जीवन जगत की जो सच्चाइयां चल रही थी, आज भी चलती हैं, नई बात नहीं है। तो एक ओर तो इन विषयों में लोट पलोट लगाते रहो, और दूसरा ये कि उनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा घोर दमन करो कि बिल्कुल काया कष्ट हो। दोनों से ही छुटकारा नहीं मिलता। तो इस महापुरुष ने एक तरीका खोज निकाला। ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि जब हम किसी रूप को देखते हैं तब हम उसके प्रति राग पैदा करते हैं या द्वेष पैदा करते हैं, कोई शब्द सुनते हैं तब उसके प्रति राग पैदा करते हैं या द्वेष पैदा करते हैं, ऐसा लगता है, और ठीक ही लगता है, बिल्कुल झूठ बात नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा एक और ठीक बात उन्होंने ढूंढ निकाली कि अरे जब रूप आंख से टकराता है तो नहीं राग पैदा होगा, तो नहीं द्वेष पैदा होगा। जैसे ही रूप आंख से टकराएगा वैसे ही शरीर में एक संवेदना होगी, जैसे ही टकराए वैसे ही संवेदना होगी। कुदरत के इस नियम को खोज निकाला, फस्स पच्चया वेदना, जहां स्पर्श हुआ आंख से रूप का स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक संवेदना जागेगी, कान का शब्द से स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक संवेदना जागेगी, नाक का गंध से स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक संवेदना जागेगी, जीभ का रस से स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक संवेदना जागेगी, शरीर का स्पर्शव्य पदार्थ से स्पर्श होते ही सारे शरीर में संवेदना जागेगी, मन का किसी भी चिंतन से स्पर्श होते ही सारे शरीर में संवेदना जागेगी। बड़ी नई बात खोज निकाली, सच्ची बात थी, पर उन गहराइयों तक जाना यही तो बोधि थी, और क्या बोधि थी। इन गहराइयों तक जाकर के इस नई सच्ची बात को खोज निकाली, वेदना होती है शरीर पर, एक संवेदना होती है। यदि वो संवेदना सुखद हुई तो हमें प्रिय लगी और हमने राग बनाना शुरू कर दिया, वो संवेदना अप्रिय हुई तो हमने द्वेष बनाना शुरू कर दिया। मानस के चार खंडों को इन गहराइयों में जाकर के समझ लिया, इतनी स्पष्टतया समझ लिया, मानस का एक खंड जिसे उन दिनों की भाषा में विज्ञान कहा, वो उस खंड का केवल इतना ही काम है कि वो जानता है कि कोई घटना घटी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। एक खंड है मानस का वो जिसका काम केवल जानना है, उसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहें, कॉग्निशन कहें, यही उसका काम है, केवल जानने का काम है। कान पर शब्द टकराया, वो केवल इतना जानेगा कि कान पर कुछ खटपट हुआ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानेगा। आंख पर कोई रूप टकराया, कुछ टकराया, आंख के सामने कुछ आया, बस इतना ही जानेगा। इसके बाद एक और अंग उठता है, मानस का एक और खंड खड़ा होता है हमारे भीतर, तुरंत खड़ा होता है, जिसे उन दिनों की भाषा में संज्ञा कहा गया, और उसका काम है पहचानना, उसका काम है मूल्यांकन करना। अब तक जितना अनुभव जीवन में हुआ है और उन अनुभवों की जो याददाश्त अपने साथ लिए चल रहे हैं, उनके बल पर यह चेतना का दूसरा खंड संज्ञा ये उसको पहचानता है। शब्द आया रे, क्या शब्द आया? ओ गाली का शब्द आया, पहचान लिया। ओ प्रशंसा का शब्द आया, और जैसे ही वो मूल्यांकन कर देता है, ये गाली है बहुत बुरी है, ये प्रशंसा है बहुत अच्छी है, तो ये संवेदना जो शरीर से विषय के टकराते ही, कान से, नाक से, आंख से, जीभ से और मन से भी विषय के टकराते ही शरीर में एक संवेदना जागती है, वो संवेदना तुरंत पलट जाएगी। संज्ञा ने जैसे ही कह दिया गाली है बहुत बुरी है, वैसे ही सारी शरीर की संवेदना बड़ी दुखद हो जाएगी, बड़ी अप्रिय हो जाएगी। संज्ञा ने जैसे ही कह दिया अरे प्रशंसा है बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, सारे शरीर की जो संवेदना होगी उस समय बड़ी सुखद होने लगेगी। प्रतिक्रिया उसके बाद शुरू होती है, वेदना पच्चया तना, भस्स पच्चया वेदना, स्पर्श होते ही एक संवेदना होगी, और संवेदना होने के बाद आगे का काम शुरू होगा। भस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, उसके बाद तृष्णा का काम शुरू होगा। तृष्णा में दोनों आ गए, राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया। प्रिय को समेटे रखने की तृष्णा, अप्रिय को दूर कर देने की तृष्णा। अच्छा लगता है उसे समेटना चाहते हैं, बुरा लगता है उसे धकेलना चाहते हैं, ये दोनों समेटने और धकेलने का काम तब होता है जबकि संवेदनाएं सुखद होती हैं या दुखद होती हैं, तो जड़ों तक जा पहुंचे। इन जड़ों तक जो नहीं पहुंचता वो अविद्या में रहता है, मूढ़ता में रहता है, बेहोशी में रहता है। ऊपर ही ऊपर केवल बुद्धि के स्तर पर विकारों से दूर होने के हजार प्रयत्न करता है, तो बुद्धि को भले सुधार ले, मानस के ऊपरी ऊपरी सतह को भले सुधार ले ऐसा व्यक्ति, अंतर मन की गहराइयों में क्या हो रहा है जान ही तो नहीं पाया ना, कितनी अविद्या में रह गया। इसको अविद्या कहा गया कि जिसको जाने ही नहीं हम क्या हो रहा है, सारी शरीर स्कंद पर क्या गुजर रही है, कैसी संवेदना हो रही है, प्रतिक्षण संवेदना होती है, दुखद हो सुखद हो, और जैसी संवेदना होती है वैसी प्रतिक्रिया करते हैं, राग की करते हैं, द्वेष की करते हैं, ऐसा प्रतिक्षण अंतर मन के गहराइयों में हुए जा रहा है, और ये बुद्धि ऊपर ऊपर से अपने को वीत राग रख रही है, वीत द्वेष रख रही है, और एक अजीब धोखे में सारा जीवन बीत रहा है। अरे हमने धर्म को खूब समझ लिया, हमारा क्या कहना, बुद्धि के स्तर पर अपने आप को वीतराग रखकर, बुद्धि के स्तर पर अपने आप को वीत द्वेष रखकर, कोई व्यक्ति सही माने में वीतराग नहीं होता, कोई व्यक्ति सही माने में वीत द्वेष नहीं होता। राग कहाँ आरंभ हुआ, जहां आरंभ हुआ वहां रोकना पड़ेगा, तो अनारंभी बनेगा, तो ही सर्वारंभ परित्यागी होगा। आरंभ कैसे त्याग पाएगा, नहीं तो आरंभ तो हो ही गया, गांठें बदनी शुरू हो गई, जहां संवेदना जागी वहीं गांठ बांधनी शुरू कर दी, और वो अंतर मन की गहराइयों से गांठ बांधने का काम शुरू हो, आज ये सत्य हो गया। बहुत अंतर है इन दोनों में, दुख सत्य में और दुख आर्य सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। दुख सत्य तो सारा संसार माने जा रहा, हर दुखियारा कहता है मैं दुखी हूं, देख कितना दुख है, केवल मात्र दुख से दुखी होकर के कौन मुक्त बन गया, कौन बुद्ध बन गया, कौन अरहंत बन गया, कौन शुद्ध बन गया, हो ही नहीं सकता। जब तक दुख भोग रहा है तब तक मुक्त नहीं हुआ, और बंधन में बंधता है, जितनी बार दुख जागता है उतनी बार व्याकुल होकर के द्वेष पैदा करता है, दुख से द्वेष पैदा करता है, दुख को धकेलने का काम करता है, दुख को भोगने का ही काम करता है। जब तक भोगता है तब तक तो बंधन ही बंधन है। जिस दिन ये स्वभाव पलट जाएगा, भोगता भाव से दृष्टा भाव आ जाएगा, देखें कैसा दुख है। और जैसे ही उसे देखने लगा, आर्य बनने का रास्ता खुल गया। प्रत्येक अनार्य धर्म के रास्ते चलकर आर्य बन जाता है। अनार्य किसको कहते हैं? जो गलत रास्ते चलता है, जो अपनी भी हानि करता है, औरों की भी हानि करता है, ऐसा व्यक्ति अनार्य कहलाता है। उन दिनों की भाषा में ऐसे ही व्यक्ति को अनार्य कहते थे, जो इस प्रकार की बुराई से बचकर शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होता होता निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। जो व्यक्ति निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है, संत हो जाता है, निर्मल चित्त हो जाता है, उसी को कहा आर्य बन जाता है। तो जो बात हमें आर्य बना दे वो आर्य कहलाती है। अर्यो अठंगिको मग्गो, वो आठंग वाला मार्ग जो हमें आर्य बना दे, वो स्वयं तो आर्य है ही, अच्छा है ही, उसके अच्छे होने में कहां संदेह, पर हमें क्या मिला? जिसकी धारण करने से हम आर्य बन जाए। दुख सत्य तो है ही, इसमें कहां झुटलाया जा सकता उसे, लेकिन वही दुख सत्य हमको आर्य कैसे बनाएगा? हमको आर्य तभी बनाएगा जब उसका साक्षी भाव से दर्शन करना सीख लेंगे, उन गहराइयों से देखना सीख लेंगे। ये दुख जागा, बस जहां देख लिया ये दुख जागा, अब तो उसकी ताकत नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वहीं मुरझा जाएगा। तो जहां संवेदना जागी और जागते ही हमने प्रतिक्रिया करनी शुरू की, राग की या द्वेष की, वहीं साक्षी भाव से देखना है। अरे जब तक प्रतिक्रिया करते 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 चेतन चित्त पर बात आ गई, तब तक तो इतना मैला कर लिया मन को, अब उसके बाद सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधारना कठिन हो जाएगा, वो मैल तो सिर पर चढ़ गया। जहां क्रोध जागा वहीं उसे देखकर समाप्त कर लिया, जहां द्वेष जागा वहीं उसे देखकर समाप्त कर लिया, जहां भय जागा वहीं उसे देखकर समाप्त कर लिया, तो मुक्ति का रास्ता मिला, अन्यथा मुक्ति का रास्ता नहीं होता। इसी को अत्त सम्मापणी दीजिए, वो आत्ममुखी होने से होता है, आत्म प्रणिधान होने से होता है। जैसे अभी कहा कि बुद्ध के पहले भी समाधियां तो थी ही, आठों ध्यान चलते थे। स्वयं बोधिसत्व ने दो गुरुओं के पास जाकर के, एक के पास सात ध्यान सीखे, दूसरे के पास आठवां ध्यान सीखा, तो था ही कोई बुद्ध हो या न हो, शील भी चलता ही है, समाधि भी चलती ही है, और बुद्धि के स्तर पर प्रज्ञा भी चलती ही है, श्रुतमयी प्रज्ञा चलती रहती है, चिंतनमयी प्रज्ञा चलती रहती है। बुद्ध की विशेषता होती है भावनामयी प्रज्ञा देता है, वो प्रज्ञा जो अपने अनुभवों द्वारा अपने भीतर जागती है, माने अपनी अनुभूतियों वाली प्रज्ञा है। और उसी के लिए सारा का सारा मार्ग समझाया, किस प्रकार करोगे, किस प्रकार अपनी गहराइयों में जाकर के, जहां राग आरंभ होता है वहां देखोगे उसे, जहां द्वेष आरंभ होता है वहां देखोगे उसे। इसलिए सारा का सारा ध्यान का एक नया तरीका दिया लोगों को, काया को देखो, साक्षी भाव से देखना है, काया को देखो, इसी को काया अनुपस्यना कहा। और काया पर जो कुछ प्रकट होता है उसे देखो, साक्षी भाव से देखना है। काया को तो एक भोगी भी देखता है, रोज दर्पण में अपना मुंह देखता है और देख करके उसे संवारता है, बड़ा खुश होता है, कैसे मुक्त हो जाएगा उसे देख करके। इस तरह काया को देखने की बात नहीं, काया को देखो साक्षी भाव से देखो, भोक्ता भाव से नहीं। काया को एक रोगी भी देखता है, हाँ अरे मेरी काया रोगी है, देखिए यहाँ पर ये फोड़ा हो गया, देखिए यहाँ पर ये रोग हो गया, रोता है उसे देख देख करके, मुक्त नहीं होता। काया को एक विपश्यना योगी की तरह देखना है, न भोगी की तरह देखना है, न रोगी की तरह देखना है, योगी की तरह समत्व भाव से देखना है, जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, न उसे अच्छा मानेगा न उसे बुरा मानेगा, उसके सही स्वभाव को देखेगा, अनुभूतियों के स्तर पर देखेगा, उत्पाद होता है व्यय हो जाता है, देख उत्पाद होता है व्यय हो जाता है, बार बार उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उदय व्यय उदय व्यय, ये अनुभूतियों से जानना शुरू कर देगा। और काया पर जो प्रकट हो रहा है, क्या प्रकट होता है, काया पर जो कुछ प्रकट होता है उसी के लिए वेदना शब्द का इस्तेमाल हुआ। आज की भाषा में तो वेदना केवल पीड़ा को ही कहने लगे, 2500 वर्ष पहले की जो जन भाषा थी
उसमें वेदना को केवल पीड़ा की वेदना नहीं मानते थे, सुखद वेदना को भी वेदना ही कहते थे, दुखद वेदना को भी वेदना ही कहते थे, असुखद अदुखद जो न्यूट्रल वेदना होती है उसके लिए भी वेदना शब्द ही होता था। तो आज उसके लिए संवेदना शब्द इस्तेमाल करने लगे। शरीर के स्तर पर जो संवेदना प्रकट हो उसे साक्षी भाव से देखें, न वो मैं हूं न वो मेरी है, उसके प्रति जरा सा तादात्म्य नहीं स्थापित हो, जैसी है वैसी देखे, जैसी है वैसी देखते देखते समझ में आने लगेगा अरे ये भी केवल उत्पाद होना व्यय हो जाना, उत्पाद होना व्यय हो जाना, इनका भी यही स्वभाव है, शरीर का भी यही स्वभाव है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता प्रतिक्षण उत्पन्न होता है नष्ट होता है, इन संवेदनाओं का भी यही स्वभाव है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, कितनी ही दुखद क्यों ना हो उनका एक उत्पाद होता है समय पाकर के व्यय हो जाता है, कितनी ही सुखद क्यों ना हो उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है। इस स्वभाव को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दे तो वेदनानुपश्चना हुई, शरीर को देखे, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखे, चित्त को देखे, कैसा चित्त है उसका दमन नहीं करे। साक्षी भाव से देखने का मतलब यही हुआ कि उसमें कहीं कोई रद्दो बदल करने की जरा कोशिश नहीं, परिवर्तन करने की भी कोशिश नहीं, केवल देखे इस समय मेरा चित्त बड़ा बातूनी है, देख कितनी बात कर रहा है, तो उसका दमन करके घुटन पैदा करके उसको निर्विचार करने की कोशिश नहीं, बस केवल मात्र इतना ही जानते रहेंगे अच्छा देख कितना विचार करता है कितनी बातें करता है बड़ा बातूनी है बड़ा बात, यूं उसे साक्षी भाव से देखेंगे और समझने लगेंगे देख ये जो बात करता है ये भी तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अरे इसमें राग जाग गया, बड़ा राग रंजित चित्त है, राग रंजित चित्त भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, यूं चित्तानुपश्चना करने लगे। जैसे शरीर को देखा, शरीर पर उत्पन्न होने वाले संवेदनाओं को देखा, ऐसे ही चित्त को देखा और चित्त पर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है उस सारे प्रपंच को देखता है, किस प्रकार राग पैदा होती है चित्त में, किस प्रकार दुख द्वेष पैदा होता है चित्त में, किस प्रकार दुख पैदा होता है चित्त में, अरे दुख का ये कारण है इस वजह से पैदा होता है, उसका ऐसा निवारण है, ये तरीका है उसके निवारण करने का, सारे खेल को अनुभूतियों के स्तर पर जान जाता है, बुद्धि विलास करके नहीं, वाणी विलास करके नहीं, केवल भाव आवेश के मारे, केवल भक्ति भाव के मारे, श्रद्धा के मारे, बुद्ध ने कह दिया इसलिए मान रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं, बुद्ध ने कह दिया उसे मान लेने से कुछ नहीं मिलेगा, बुद्ध ने कह दिया उसे जान लेने पर मिलेगा, और जानने और मानने में तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, सारा का सारा धर्म जानने का धर्म है मानने का नहीं, जान करके तब मान लेंगे, मानेंगे ही अपने आप मानेगा, अनुभूति में जो बात आ गई उसके लिए तर्क करने की जरूरत नहीं, हम जान गए अपनी अनुभूति से जान गए, गलती से आग पर हाथ रखा गया हाथ जल गया, जान गए आग जलाती है, अब किसी को तर्क द्वारा समझाने की जरूरत नहीं कि आग जलाती है, अरे देख लिया ना जलाती है भाई, अब दूसरी बार उस पर हाथ नहीं रखेंगे, ठीक इसी प्रकार अनुभूतियों से जान जाएंगे, राग जागा तो आग ही जागी जलाना, जैसे ही आग जागी अंदर जलने लगा, द्वेष जागा तो आग जागी जागी ना अंदर जलने लगा, अपनी अनुभूतियों से जब यूं जानने लगेगा दूर रहेगा, अपने आप दूर रहेगा, दमन करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो न तो उसमें लोट पलोट लगाएगा और न उसे केवल घोट करके दमन करके उससे बाहर निकलने का प्रयत्न, निकम्मा साक्षी भाव से देखेगा, भाव से शरीर को देखेगा, अपने वाली संवेदनाओं को देखेगा, माने कायानुपश्चना करेगा, वेदनानुपश्चना करेगा, चित्त को देखेगा, चित्त पर उठने वाले धर्म जो कुछ उठ रहा है चित्त पर उसको देखेगा, सारे कुदरत के कानून को देख जाएगा, इंद्रिय जगत की सारी सच्चाइयों को देख जाएगा, और जैसे ही इंद्रिय जगत की सारी सच्चाइयों को अनुभूतियों के स्तर पर देखने लगा, मैल की परतें उतरने लगती हैं, एक पर एक मैल की परतें उतरती जाती हैं, उपज्जित्वा निरुज्जंती, और जितनी जितनी उतर जाती है उतना उतना सही माने में सुख आ जाता है, उसी को दुख निरोध कहा, उतना उतना दुख से छुटकारा हो गया, जितनी परतें मैल की उतर गई, जितनी गांठें खुल गई उतना दुख दूर हो गया, सारी की सारी खुल गई गांठें, सारा मैल उतर गया, अरे तो निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा, तत्क्षण निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा। धम्मानुपश्चना में दोनों आ गए, इंद्रिय जगत का जो धर्म है उसका तो साक्षात्कार करेगा ही, जो इंद्रियातीत का धर्म है, जो लोकातीत का धर्म है, जो भवातीत का धर्म है, जो निर्वाण का धर्म है, उसका क्या स्वभाव है? यहाँ तो उत्पाद व्यय ही उत्पाद व्यय, वहां न कुछ उत्पाद है न कुछ व्यय है, जहां उत्पन्न ही नहीं होता वहां व्यय क्या होगा? उस अमृत का साक्षात्कार कर लेगा, इसी रास्ते चलते 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 कर ही लेगा, कर लेगा तो दुख विमुक्त हो गया, आर्य बन गया, सारे दुखों के बाहर आ गया। अब वो व्यक्ति चाहे हिंदू हो, वो व्यक्ति चाहे मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, नेपाली हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, रूसी हो, चीनी हो, क्या फर्क पड़ता है? आदमी आदमी है, कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू पड़ता है। जब तक अविद्या में रहेगा, बेहोशी में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, दुष्प्रज्ञता में रहेगा, तब तक भीतर ही भीतर गांठे ही बांधे जाएगा, गांठे ही बांधे जाएगा। जिस समय आत्म प्रणिधान होने लगा, अपनी ओर बाहर का कोई आलंबन नहीं, हमें अपना ही आलंबन लेना है, ये चारों के चारों अपने ही आलंबन है, शरीर का आलंबन, शरीर पर उठने वाली संवेदनाओं का आलंबन, चित्त का आलंबन, चित्त पर उठने वाले विकारों का आलंबन, इनका आलंबन लेकर के जिस दिन सच्चाई को देखना शुरू कर दिया, देखते देखते विकारों के बाहर आ जाएगा, मुक्ति का रास्ता खोज निकाला। महापुरुष की यही सबसे बड़ी विशेषता, इस विशेषता को भी केवल बुद्धि से ही समझ के रह जाएंगे, इस विशेषता के बारे में सुन करके और उनके प्रति बड़ी प्रशंसा के शब्द बोल के रह जाएंगे, कुछ मिला मिलाया नहीं। फिर औषधि की प्रशंसा हो गई, वैद्य की प्रशंसा हो गई, औषधि का सेवन नहीं किया। ये जो धर्म सिखाया, जो सार्वजनीन धर्म है, कभी उन्होंने नहीं कहा मैं बौद्ध धर्म सिखाता हूं। जो व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा बौद्ध धर्म नहीं सिखाएगा, धर्म सिखाएगा। अरे धर्म कभी बौद्ध होता ही नहीं, धर्म कभी हिंदू होता ही नहीं, धर्म कभी जैन होता ही नहीं, मुसलमान होता ही नहीं, धर्म तो सार्वजनीन है, जो अणु अणु को धारण किए हुए है, अणु अणु जिसे धारण किए हुए हैं, सजीव निर्जीव सब जिसे धारण करते हैं, जो सबको धारण करता है, वो कुदरत का कानून, वो रित, वो विधान, उसका जो साक्षात्कार कर लेता है और उसे अपने जीवन में उतार लेता है, वही मुक्त हो जाता है, दुखों के बाहर निकल जाता है। ऐसी कल्याणकारिणी औषधि जिस महापुरुष ने दी, आज उनके सम्मान का दिवस, उनको याद करने का दिवस, तो सम्मान इसी बात में है कि इस औषधि का सेवन करें, सेवन करें, धर्म को धारण करें, धारण करें, खूब मंगल होगा। जीवन में शील सदाचार उतरे, केवल शील सदाचार के चर्चा करके नहीं रह जाए, जीवन सचमुच शीलवान बन जाए, सदाचारी बन जाए। और कैसे बन जाए? जब तक मन वश में नहीं होगा तो मन नहीं पाएगा, इसलिए समाधि का अभ्यास करें, कैसे मन को अपने वश में करना सीखें। लेकिन केवल मन को वश में ही करके रह जाएंगे तो भी ऊपर ऊपर से दमन ही करके रह गए, अंतर्मुख की गहराइयों तक नहीं पहुंचे, तो प्रज्ञा जगाएंगे, ऐसी प्रज्ञा जगाएंगे, ऐसे प्रज्ञा में स्थित हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, एक दमन आसक्त हो जाएंगे, अंतर मन की गहराइयों तक राग जगने ही नहीं देंगे, द्वेष जगने ही नहीं देंगे, तो निर्मलता जो प्राप्त होगी, तो सहज भाव से शील सदाचार का जीवन जिएंगे, दमन करके नहीं, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं, स्वभाव बन जाएगा, दुशील हो ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो जाएगा। प्रज्ञा में जो स्थित हो गया, दुशील कैसे होगा, वो मन का गुलाम कैसे होगा, अपने आप सहज भाव से मन का मालिक रहेगा। शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, सबके लिए मंगल का विधान, सबके लिए कल्याण का विधान, सबकी स्वस्थ मुक्ति का विधान। आओ चलें इस रास्ते पर, कदम कदम चलें इस रास्ते पर, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, ऐसा रास्ता कि जहां कल्याण ही कल्याण है, जिस रास्ते पर उठाया हुआ एक भी कदम जरा भी निरर्थक नहीं जाता, जरा सा भी प्रयास निष्फल नहीं जाता, जितना जितना प्रयास कर लेंगे उतना उतना कल्याण सधने लगेगा, केवल शील का ही पालन करना सीख जाएंगे, उसी से कल्याण शुरू हो जाएगा, समाधि का भी अभ्यास शुरू कर लेंगे, अरे और बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। प्रज्ञा जगानी शुरू कर दी तो कहना ही क्या, कितना कल्याण हो जाएगा। और यूं प्रज्ञा जगाते जगाते निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया तो कहना ही क्या, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आओ धारण करें आज के इस मंगलमय दिवस पर, मंगल धर्म धारण करें, इसका निश्चय करें कि केवल चर्चा करके नहीं रह जाएंगे, केवल सिर झुका के नहीं रह जाएंगे, केवल श्रद्धा जगा के नहीं रह जाएंगे, चलेंगे कदम कदम धर्म पर चलेंगे, धीरे धीरे एक एक कदम ही सही पर आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे और अपना कल्याण साधेंगे, अपना मंगल साधेंगे, अपनी स्वस्थ मुक्ति साधेंगे। धर्म धारण करने में सबका मंगल समाया हुआ, सबका कल्याण समाया हुआ, सबकी स्वस्थ मुक्ति समाई हुई। संसार के सारे दुखियारे लोग अपने अपने दुखों के बाहर आएं, धर्म धारण करें और दुखों के बाहर आएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।